क्योंकि किसी भी युग के शासक वर्ग की विचारधारा ही उस युग की प्रधान विचारधारा बना करती है। यही कारण है कि यद्यपि नीची कही जाने वाली जातियों से आए संतों ने अपने जिए भोगे और अपने देखे सुने के साक्ष्य पर विद्यमान सामाजिक भेदभाव, रूढ़िवाद, पाखंड, शिष्टाचार आज पर कठोर टिप्पणियां की हैं, उन्हें अमान्य किया है, उनके खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। प्रभु वर्गों की विचारधारा, उनकी विश्व दृष्टि और उनके विधि निषेधों में रची गई, उनकी चेतना कुल मिलाकर एक विरोधाभास ही पैदा करती है। जाहिर है कि किस असंगत का लाभ भी व्यवस्था और शासक वर्ग के ही खाते में गया है, जिनके खिलाफ अपनी सारी ऊर्जा से ये संत उठे हैं। यह सही है कि चले आ रहे सामाजिक विधान की अमानवीयता और उसकी विसंगतियों पर अपने अंतःकरण की समुची निष्ठा और शक्ति से तीखे प्रहार करते हुए भी संत व्यवस्था की इन विसंगतियों को मिटाने में असफल रहे। यह भी सही है कि कोरे मानवतावादी उद्गारों, कोरी सदिच्छाओं और व्यवस्था की विरूपताओं के प्रति आक्रोश और विक्षोभ जन्य अभिव्यक्तियों से कोई समाज बदला भी नहीं सकता। समाज में बुनियादी बदलाव या बुनियादी सामाजिक रूपांतरण की अपनी दूसरी अपेक्षाएं होती हैं, जिन्हें पूरी कर पाना इन संतों के सामर्थ्य से बाहर की बात थी। ये संत थे, सामाजिक परिवर्तन के नेता या कार्यकर्ता नहीं थे। कुछ महत्वपूर्ण वस्तुगत ऐतिहासिक कारण भी थे, जिनके चलते कमजोर हुए सामंतवाद को पुनः अपने को एकजुट करने का मौका मिला। दस्तकार, शिल्पकार संगठित शक्ति के रूप में सामने नहीं उभर सके। नीचे तबके से ऊपर आए वर्गों ने भी सामंत वर्गों से समझौता करते हुए सत्ता में हिस्सा बांट की। बहुत से कारण हैं जिनके चलते संतों की ओजस्वी और बेधक वाणी, उनके भक्ति का वेग अंततः अपने में सीमित होता हुआ विशेष हो गया। बावजूद इसके इन संतों की संकल्प धर्मिता, उनकी निष्ठा मानवोचित न्याय पाने की और जन जन को उसके दायरे में लाने की, उनकी आकांक्षाओं को एकदम खारिज भी नहीं किया जा सकता। उनका अपना ऐतिहासिक महत्व है और रहेगा। विषमताओं से भरे हमारे समाज इतिहास की कुछ रोमांचक सच्चाइयों को जो उनके बीच से झलकी हैं, वे बराबर हमारी निगाहों के सामने रहती हुई हमें संक्षुब्ध और परेशान करती रहेंगी। उनका यह महत्व कम नहीं है, कारण वे झूठ के उस मुलम्मे को बराबर उजागर करती रहेंगी, व्यवस्था के प्रभुओं ने जिसे बड़े यत्न से इन विसंगतियों पर धर्म शास्त्रों का सहारा लेकर चढ़ा रखा है। निर्गुण भक्ति या भक्ति आंदोलन के जिन सामाजिक निहितार्थों की बात हम पहले कर चुके हैं, इसी बिंदु पर वे अगले समय में किए जाने वाले प्रयासों का प्रेरणा स्रोत बनते हैं। जो सामाजिक सत्य संतों की वाणियों के माध्यम से सामने आया, समाज इतिहास का जो यथार्थ उनके माध्यम से उद्घाटित हुआ, उसके मद्देनजर ही भक्ति आंदोलन अपनी समग्रता में समरस और संश्लिष्ट न रहकर दो फांके में विभाजित हो जाता है, अपनी उस तमाम महिमा को खो बैठता है जिससे उसके प्रारंभिक उन्मेष के तहत उसे मंडित किया गया था। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति ही उसकी दो फांके हैं जो उसे विभाजित करते हैं। भक्ति क्या जमीन पर, उपासना की जमीन पर एकता और उनके अंतर्वर्ती सूत्रों की समानता पर कितनी ही बातें की जाएं, वे की भी गई हैं, सामाजिक यथार्थ भक्ति के इन दोनों रूपों की सामाजिक अंतर्वस्त से उपजी वास्तविकता की चट्टान से टकराकर वे चूर चूर हो जाती हैं। जैसा हम कह चुके हैं, उनके वस्तुगत कारणों के चलते निर्गुण भक्ति को हाशिए पर जाना पड़ा और उस सगुण भक्ति का आविर्भाव हुआ जो उपासना और भक्ति के उदात्त मनोलोक में तो निर्गुण भक्ति के साथ एकात्म दिखाई देती है, किंतु उससे बाहर आते ही उसे सामाजिक सोच उस दार्शनिक वैचारिक आधार को पुष्ट करती है जो व्यवस्था के प्रभु वर्ग की सामाजिक सोच का स्रोत रहा है। सगुण भक्ति के तहत भक्ति का यह प्रवाह पूरी तरह शास्त्र और पुराण सम्मत हो जाता है। ऐसा होना स्वाभाविक भी था। वस्तुतः सगुण भक्तों का अपना परिवेश, उनके वंशानुगत तथा आर्य संस्कार, अपनी वेश परंपरा के अनुरूप उनकी सामाजिक सोच, जिनके जिए भोगे का सत्य निर्गुण संतों, खास तौर से नीची जात से आए हुए संतों जैसा नहीं था। उसे ऐसा होना भी नहीं चाहिए था, तभी उपासना और भक्ति की जमीन पर साथ साथ खड़े दिखाई देते हुए भी उससे किंचित मात्र हटते ही, अर्थात समाज की जमीन पर पैर रखते ही, वे अलग अलग हो जाते हैं। उपासना और भक्ति की जमीन पर भी उनमें उसकी उदात्ततम चेतना के स्तर पर ही एकात्म दिखाई देता है, अन्यथा वहाँ भी उनमें भिन्नता है। सगुण भक्तों की अवतारवाद पर आस्था अथवा सारे विधि विधानों के तहत की गई भक्ति की जरूरत पर उनका बल उन्हें भक्ति के स्तर पर भी निर्गुण संतों से पृथक करता है। भक्ति से जुड़े जिन तमाम बाह्याचारों के खिलाफ निर्गुण संत एकमत हैं, सगुण भक्तों में उन सारे बाह्याचारों की गरिमामय प्रतिष्ठा है। जहाँ तक सामाजिक सोच का प्रश्न है, न केवल निर्गुण संतों और सगुण भक्तों की सामाजिक सोच उन्हें तथा समूचे भक्ति आंदोलन को विभाजित करती है। सगुण भक्त न केवल चली आ रही सामाजिक सोच और उससे उपजी अमानवीयता या बर्बरता पर निर्गुण संतों की तरह चोट नहीं करते, उसे उसके आदर्शीकृत रूप में बनाए रखने की हिमायत करते हैं और उसके विपरीत जाने वाले उसकी भर्त्सना का पात्र बनते हैं। वे कबीर ही क्यों न हो, वेद विहित शास्त्र सम्मत वर्ण धर्म की चली आ रही परंपरा के सगुण भक्तों द्वारा की गई इस हिमायत और उसके फलितार्थों को लक्ष्य करके ही गजानन माधव मुक्ति बोध ने भक्ति आंदोलन के दोहरे चरित्र पर बुनियादी सवाल उठाए हैं। जरूरत इन सवालों से टकराने की है, न कि हल्केपन के साथ उन्हें खारिज कर देने की। खास तौर से महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन पर लिखते हुए उत्तर भारत के निर्गुण तथा सगुण भक्ति पर टिप्पणी करते हुए मुक्ति बोध लिखते हैं, क्या यह एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है कि ग्राम भक्त शाखा के अंतर्गत एक भी प्रभावशाली और महत्वपूर्ण कवि निम्न जातीय शूद्र वर्गों से नहीं आया? क्या यह एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है कि कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत रसखान और रहीम जैसे हृदयवान मुसलमान के बराबर रहे आए, किंतु राम भक्ति शाखा के अंतर्गत एक भी मुसलमान और शूद्र कवि प्रभावशाली और महत्वपूर्ण रूप से अपनी काव्य प्रतिभा का विशद काव्य प्रतिभा विशद नहीं कर सका? वे आगे कहते हैं, निष्कर्ष यह कि जो भक्ति आंदोलन जनसाधारण से शुरू हुआ और जिसमें सामाजिक कट्टरपन के विरुद्ध जनसाधारण की सांस्कृतिक आकांक्षाएं बोलती थी, उसको मनुष्य सत्य बोलता था, उसी भक्ति आंदोलन को उच्च वर्गीयों ने आगे चलकर अपनी तरह का बना लिया और उससे समझौता करके और अनंतर जनता के अपने तत्वों को उसे निकाल कर उन्होंने उस पर अपना पूरा प्रभुत्व स्थापित कर लिया। कुल मिलाकर इस संदर्भ में मुक्तिबोध का कहना यही है कि भक्ति आंदोलन का जो व्यापक और विशद जनाधार निर्गुण भक्ति में था, वह संकुचित और सीमित होते हुए क्रमशः सगुण कृष्ण भक्ति से सगुण राम भक्ति तक पहुंचते पहुंचते अपना महत्व खो बैठा। यही स्थित विचारों के क्षेत्र में रही, क्रमशः सगुण कृष्ण भक्ति से सगुण राम भक्ति तक भक्ति आंदोलन के प्रगतिशील सामाजिक अंतर्वस्तु अपना सारा ताप और सारी उष्मा खो बैठी। जिन सामंती शक्तियों के कमजोर होने के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन सामंती विचारधारा को चुनौती देता हुआ सामने आया था, कालांतर में उन्हीं सामंती शक्तियों ने भक्ति आंदोलन पर अपना वर्चस्व जमा लेने में सफलता पाई। मध्यकाल में एक खास दौर में नीची कही जाने वाली जातियों से संतों का सामने आना और कालांतर में लंबे समय तक उनका सांस्कृतिक मंच से अदृश्य हो जाना इसी ऐतिहासिक संदर्भ में समझा जा सकता है। अपनी चर्चा की शुरुआत में हमने सवाल उठाया था कि आखिर क्या कारण था कि जिसके चलते 300 सालों तक भक्ति की श्रोतश्रेणी में अवगाहन करने के उपरांत उसके सुफल के रूप में हिंदी प्रदेश को रीच काल का श्रृंगार और नायिका भेद मिला। हमने भक्ति आंदोलन के क्रांतिकारी सारतत्व की निर्गुण भक्ति से सगुण भक्ति में पहुँच कर निष्प्रभावी हो जाने की जो बात कही है, उसके भीतर से ही हमें उसकी इस परिणत यहाँ तक कि सर्वथा लुप्त हो जाने की सच्चाई का साक्ष्य मिलेगा। यदि हम कहें कि ऐसा होना ही सर्वथा स्वाभाविक था तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वस्तुतः सगुण कृष्ण भक्त और राम भक्त कवियों ने जैसे आने वाले युग में रीति रचनाकारों को श्रृंगार और नायिका भेद किए विरासत रचना शिल्प के सारे अभिजात के साथ सौंप दी हो। सवाल है कि सगुण भक्ति कविता और रीत कविता में आखिर बुनियादी फर्क क्या है? यही ना कि एक का आधार भक्ति की भावों में सगुण ईश्वर की उपासना और उसके प्रतिहत निष्ठा है, जबकि दूसरी का आधार विशुद्ध लौकिक भूम पर श्रृंगार की प्रस्तुत है। भक्ति कविता के आराध्य के स्थान पर रीत कविता में आश्रयदाता है। भक्त कवियों जैसी अपने आराध्य के प्रतिहत निष्ठा, निश्चल आत्मसमर्पण और निस्वार्थ भक्ति यहाँ भले न हो, आश्रयदाता के प्रति उन्मुखता, उसे रिझाने मनाने, उसके सुख संतोष का ध्यान, उसकी अभिरुचियों का पालन और उसकी कृपा की आकांक्षा वैसी ही है। समर्पण यहाँ भी है, उतना ही निष्काम और निस्वार्थ जरूरी नहीं। ऊपर से देखने पर लगता है कि भक्त कवियों की रचनाओं में भक्त के अलावा और कुछ नहीं है और रीति कविता में श्रृंगार के अलावा और कुछ नहीं है, किंतु गहराई से जाने पर स्पष्ट होता है कि भक्त कवियों में भक्ति के साथ साथ श्रृंगार भी है और सूर जैसे कवियों में तो भरपूर मात्रा में, जिसके चलते उन्हें श्रृंगार के अप्रतिम माना गया है। इसी प्रकार रीति कवियों में आंशिक रूप से ही सही भक्त भी पर्याप्त मात्रा में है। पद्माकर जैसे कवियों में तो अपनी समुची गहराई और व्यापकता के साथ रीत काल की विशुद्ध भक्त की रचनाओं को क्षण भर के लिए भुला दें तो उनकी श्रृंगारी कविता भी प्रायः राधा कृष्ण की भक्ति के बहाने ही लिखी गई है। कहने का तात्पर्य कि भक्ति और श्रृंगार की स्थिति अपनी अपनी तरह से भक्ति और रीति कविता दोनों में है। कुछ और गहराई में उतरे तो पता चलेगा कि सूर के राधा कृष्ण जिस प्रकार की प्रेम क्रीड़ाओं में निमग्न होते हैं, रीत कवियों के बहाने वाले राधा कृष्ण की प्रेम क्रीड़ाएं उनसे न केवल भिन्न नहीं हैं, उनकी उनसे होड़ करती प्रतीत होती हैं। गोस्वामी तुलसीदास अपने संपूर्ण मर्यादा के बावजूद बरवय आदि में श्रृंगार की अपेक्षाकृत मुखर अभिव्यक्ति करते हुए भी अपनी दूसरी कृतियों में ईश्वर उपासना विषय कृति को भले ही उनकी उसकी मर्यादाओं में निभा गए हों, राम भक्त के रसिक संप्रदाय में सीता और राम की प्रणय लीला रीति कवियों के नायक नायिका की प्रणय लीलाओं को कहीं कहीं फीका भी कर देती है। जहाँ तक रीति कवियों के नायिका भेद का सवाल है, उसके पर्याप्त बीज सूर की रचना में है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने अपनी पुस्तक महाकवि सूरदास में यह सवाल भी उठाया है। रीति कवियों का नायिका भेद यदि अपने मूलवर्ती प्रेरणाओं में सूरदास के इन उपक्रमों से संबंध बनाता है तो उसे गंभीरता पूर्वक विचार की परिधि में लाने की जरूरत है। सूर का छोड़ भी दें तो अष्टछाप के प्रमुख कवि नंद दास ने तो स्वतंत्र रूप से नायिका भेद पर लिखा है। कहने का तात्पर्य यह कि ईश्वर विषय कृति होने के बावजूद भक्त कवियों की रचनाओं में श्रृंगार अपने जिस उदग्र मांसल और उभरे हुए रूपों में चित्रित हुआ है, रीत कविता के श्रृंगार को एकदम नया अजूबा और उससे कतई असंपृक्त नहीं माना जा सकता। रीत श्रृंगार की प्रचुर सामग्री रीत कवियों के लिए भक्त कवियों ने ही मुहैया की है। अब थोड़ा भक्ति के पक्ष को विशद करें। जिस प्रकार सगुण भक्त कवियों में भक्ति की प्रधानता के बावजूद श्रृंगार न केवल अनुपस्थित नहीं है, पूरे समारोह के साथ चित्रित है, उसी तरह श्रृंगार की लौकिक श्रृंगार की प्रधानता के साथ, जैसा हमने अभी कहा, रीत कवियों की रचनाओं में भी आंशिक रूप से ही सही भक्ति बराबर विद्यमान है। हमने यह भी कहा कि बिहारी जैसे कवियों की भक्ति की अभिव्यक्ति भले ही चमत्कार पूर्ण उक्ति वैचित्र्य आज से जुड़ी हो, पद्माकर तथा कुछ दूसरे रीत कवियों का भक्ति रचनाओं में गांभीर्य, गहराई, निश्चलता तथा पारदर्शिता भक्त कवियों जैसी ही है। पद्माकर ने तो भक्ति पर भक्त कवियों जैसे अधिकार के साथ ही लिखा है, घनानंद अलौकिक प्रेम का को जायसी की ठप पर अलौकिक उठान तक पहुँचाने में सामर्थ्य हुए हैं। यही नहीं, लगभग सारे प्रमुख रीति कवि केशव, बिहारी, खनानंद आदि किसी न किसी रूप में किसी न किसी भक्ति संप्रदाय से जुड़े, उसमें दीक्षित हुए हैं। कब के रूप में रोटी रोजी कमाने की व्यवस्था ने उन्हें भले ही ह्रासशील सामंती अभिरुचियों के पोषक आश्रयदाताओं की कृपा का आकांक्षी बना दिया हो, और अपनी कवि प्रतिभा को उन्होंने आश्रयदाताओं की अभिरुचियों को संतुष्ट करने में खपा दिया हो, उससे उबरने वाले क्षणों में उन्होंने भक्ति की अपनी सहज मानवीय भावना को जो अभिव्यक्ति दी है, उसे छद्म नहीं माना जा सकता और न ही उसे खारिज किया जा सकता है। कुछ विचार भक्त और रीति कवियों की विश्व दृष्टि और उनकी सामाजिक सोच की करें। जाहिर है और जैसा हम कह भी चुके हैं, सगुण भक्त कवियों की विश्व दृष्टि राजसत्ता और राज समाज सत्ता के प्रभु वर्गों की उनके दर्शन ग्रंथों, धर्मशास्त्रीय उपक्रमों आदि से निर्मित और अनुकूलित परंपरा से संवर्धित और पुष्ट होती हुई विश्व दृष्टि है। उनकी सामाजिक सोच भी जैसा हम बता चुके हैं, वेद विहित, आर्य शास्त्रानुमोदित, वर्ण धर्म और उसके विधि निषेधों के आधार पर जन्मी और विकसित होने वाली सामाजिक सोच है। रीति कवियों की विश्व दृष्टि और सामाजिक सोच भी अपनी संपूर्णता में यही है, दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं है। भक्त कवियों की विश्व दृष्टि और सामाजिक सोच जिस प्रकार उनकी रचनाओं में प्रतिबिंबित हुई है, विषय अनुरूप रीति कवियों की रचनाएं भी उसे उसी पारदर्शिता के साथ प्रतिबिंबित करती हैं। भावों और विचारों से अलग भाषा और रचना शिष्य की जमीन पर रचना शिष्य रचना शिल्प की जमीन पर सगुण भक्त और रीत कवियों को परखें तो पाएंगे कि इन क्षेत्रों की सारी सामग्री और ऊर्जा उत्कर्ष सारी सामग्री और सारा उत्कर्ष रीत कवियों को विरासत में सगुण भक्त कवियों से ही मिला। भाषा का जो आभिजात्य सगुण भक्त कवियों की रचनाओं में है वही रीत कवियों में भी। कवि कौशल उक्त की भंगिमाएं काव्य रूप काव्य शास्त्री आधार इन सारे क्षेत्रों में रीत भक्त कवियों की विरासत को ही संरक्षित और संवर्धित करते रहे हैं। सुर और तुलसी की ब्रज भाषा उनके पद कवित्व सवैये आदि रीत कविता में और भी समृद्ध हुए हैं। निर्गुण संतों की अटपटी वाणी और उनके सहज सपाट काव्य संस्कार सगुण भक्ति और रीत कविता में सरलता गुम और निशेष हो गए हैं। इसकी अपेक्षा सगुण भक्ति और रीत कविता में मार्दव व्यंजकता और अभिजात्य की गरिमा है। ऐसी स्थिति में रीत कविता को बुनियादी तौर पर सगुण भक्त कवियों से मिली विरासत कहा जाए तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भक्ति आंदोलन निर्गुण भक्ति से सगुण भक्ति में रूपांतरित होकर किस प्रकार अपना क्रांतिकारी तेवर और ताप खो देता है और सगुण भक्त की कविता किस प्रकार आगे की रीतकालीन कविता के लिए रास्ता तैयार करती है इसे इतिहास का निर्णय माना जाए या उसकी सहज परिणत यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना पड़ता है। इतिहास की गति के अपने नियम होते हैं वह हमारी आकांक्षाओं और सदिच्छाओं के अनुरूप आगे नहीं बढ़ा करता। हिंदी प्रदेश के सांस्कृतिक मंच पर मध्य काल में घटित होने वाला यह इतिहास हमें प्रेरित करता है कि हम उसकी वस्तुगतता में उसे देखें परखें।